ओम शांति, ओम शांति। सभी ने कहा ओम शांति। हाँ, सभी कहेंगे ओम शांति। आज बाबा ने इस पर ही मुरली शुरू की है। जब बाबा कहते हैं ओम शांति, तो बच्चों का फर्ज है रेस्पॉन्ड करना ओम शांति कहकर। दुनिया में भी कोई हेलो करते तो वो भी हेलो करते हैं, कोई राम राम कहते हैं तो सामने वाला भी राम राम कहता है, रेस्पॉन्ड करते हैं। ये भी एक रिस्पेक्ट और रिगार्ड है। तो बाबा के लिए रिस्पेक्ट रिगार्ड कौन सा है? जब बाबा ओम शांति कहते हैं तो बच्चों का भी फर्ज है कहना, ये रिस्पेक्ट है बाबा के लिए। लेकिन हम कई बार देखते हैं ओम शांति ओम शांति, एक मैकेनिकल प्रोसेस हो जाता है ओम शांति ओम शांति। कई तो हम आगे जा रहे हैं, पीछे से कहते हैं बहन जी ओम शांति ओम शांति, तो पीछे मुड़ के देखना पड़ता है कौन बोल रहा है ओम शांति। ये भी वास्तव में मैनर्स नहीं है पीछे से कहना। अगर कहना भी है तो सामने से कहना होता, पीछे से नहीं। कौन मुड़ के देखेगा बार बार, और बार बार होता जहां जाओ पीछे ओम शांति। हाँ, तो ये भी वास्तव में डिसरिगार्ड हो जाता है। सामने से भले कहें तो फिर सामने से जवाब भी मिलता है। तो बाबा भी बच्चों को ओम शांति करते हैं तो बच्चे रेस्पॉन्ड करते हैं ओम शांति। ये भी बाबा के लिए रिस्पेक्ट रिगार्ड है। और दूसरा कौन सा रिस्पेक्ट रिगार्ड है बाबा के लिए? जब बाबा को भोजन बनाते हैं तो भोग लगाते हैं, ये भी बाबा के लिए बहुत बड़ा रिस्पेक्ट और रिगार्ड है। क्यों? क्योंकि जो हमको खिलाने वाला है, अगर हम उसे पहले नहीं स्वीकार कराते, एक सम खा जाते हैं, हाँ खुद ही खा जाते हैं, तो ये तो डिसरिगार्ड हो गया। कोई कुछ देता है तो हम उनको थैंक्स तो देते हैं ना, धन्यवाद करते हैं, तो ये भी बाबा को थैंक्स देना होता है। बाबा को याद कर भोजन स्वीकार करना होता है, पहले बाबा को स्वीकार कराना है, नहीं तो क्या कहेंगे यहाँ डिसरिगार्ड। कई कहते हैं बाबा तो खाता नहीं है, लेकिन बाबा खाए या न खाए वो बात नहीं है, पर देता कौन है? भोजन हमको किसने दिया है? तो भक्ति में तो प्रकृति को भी थैंक्स देते हैं, जानवरों के लिए भी कुछ निकालते, कौवे के भी लिए निकालते, गाय के लिए निकालते, ये भी एक रिगार्ड के रूप से कहेंगे। पर हमारा तो वो रूप नहीं है, पर कम से कम शिव बाबा को तो थैंक्स देते ही है ना, भले वो खाते नहीं, वासना तो लेते हैं, वो प्यार स्वीकार करते हैं बाबा। तो जब आज की मुरली पड़ रही थी तो मुझे वो दृश्य याद आया, क्योंकि विदेशी भाई बहने सर्दी के दिनों में आते हैं तो तो जो सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिण के देश है वहाँ गर्मी होती है और ऊपर के देशों में ठंडी होती है। तो वो दक्षिण के जो देश है वहाँ गर्मी होती है तो वहाँ आम मिलते हैं। ब्राजील जाइए, साउथ अफ्रीका जाइए, मॉरिशियस जाइए, कई देशों में आम होते हैं। तो वो आम लेकर आते हैं, मधुबन लाते हैं बाबा के लिए, तो बाबा को वो स्वीकार कराते हैं। तो मुझे याद है एक ऐसा दृश्य, तो कई देशों के आम थे तो बाबा के लिए कटोरी में रखते हैं। तो दादी जी जब मुरली के बाद बाबा को भोग स्वीकार कराती थी तो दादी ने एक दिन वो कहा, बाबा ये फल साउथ अफ्रीका से आए। तो बाबा से पूछा, बाबा ये मीठे हैं? बाबा ने कहा मीठे, बाबा तो ऐसे ही। फिर ये ब्राजील से आए हैं, बाबा ये कैसे हैं? तो थोड़े फीके, बाबा ने ये भी कह दिया। फिर कहाँ से आए? तो बाबा ने कहा ये बहुत मीठे हैं। अब ये किसने टेस्ट किया? ये बड़ा प्रश्न उत्पन्न हुआ उस समय, किसने टेस्ट किया? अब पेट में तो गुलजार दादी के गया, तो किसने स्वीकार किया? शिव बाबा तो अभोक्ता है, तो ब्रह्मा बाबा ने स्वीकार किया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की भी आत्मा है। पर शिव बाबा वो प्यार तो बच्चों का स्वीकार करते ही है ना। तो हमने देखा है कई भाई बहने सेवा केंद्रों पर जब कोई उस सीजन का पहला फ्रूट आता है तो बाबा को जरूर भोग लगाते हैं, ले आते हैं सेंटर पर। ये भी रिस्पेक्ट और रिगार्ड है बाबा के लिए। तो आज बाबा ने इस पर भी आज जोर दिया है, सुनेंगे बाबा के महावाक्य। और आज गुरु पूर्णिमा है, अब हमारे लिए तो शिव बाबा ही सतगुरु है। कई आज सवेरे से व्हाट्सएप आने लगे गुरु पूर्णिमा के, फोन भी आने लगे। तो हम तो यही कहते भाई हम तो गुरु नहीं है, हम तो चलो बाबा ने टीचर बनाया है, बाबा का ज्ञान सुनाते, लेकिन सतगुरु तो एक बाबा ही है। ब्रह्मा बाबा भी नहीं स्वीकार करते थे कि मैं कोई गुरु हूँ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सतगुरु को ही हम याद करते हैं, वही सच्चा सतगुरु है जिससे हम कनेक्शन रखते हैं, उनसे ही ज्ञान सुनते हैं, उनसे ही हम शक्ति लेते हैं। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य आज 29/7/2026 है, 29/7/2026। मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। प्यार से ऐसे नहीं पीछे से ओम शांति दीदी, ओम शांति कौन बोल रहा है पता ही नहीं। अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। ये भी एक दो को रिगार्ड देना है। प्रश्न है, भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं, यहाँ तुम बच्चे भी लोग लगाते हो भोग, ये रसम क्यों है? भक्ति में भी भोग लगाते हैं, ज्ञान मार्ग में भी भोग लगाते हैं, ये रसम क्यों? उत्तर, क्योंकि ये भी उनका रिगार्ड रखना है, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना है। भले तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है, अभोक्ता है, खाते नहीं है, लेकिन वासना तो पहुंचती है ना, बच्चों का प्यार तो बाबा को पहुंचता है, वासना तो पहुंचती है ना। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप है, तो जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। ऐसे नहीं बस जैसे थाली आई और खाना शुरू कर दिया, भक्ति में भी हाथ जोड़ते हैं ना। तो यहाँ भी बाबा को भोग तो लगाते ही है जरूर, नहीं लगाते हैं तो आज से शुरू करो, ऐसे नहीं थाली आई और खाना शुरू कर दिया। तो बाबा कहते हैं तो जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों के दिल में भी उठा ओम शांति। जैसे किसको नमस्ते कहा जाता है तो वो भी रिटर्न में कहते हैं नमस्ते। यहाँ बाप ने कहा ओम शांति, तो सब बच्चे इनकी आत्मा सहित, ब्रह्मा बाबा की आत्मा सहित सबके दिल से आएगा ओम शांति। क्योंकि पहली ओम शांति शिव बाबा ने की, तो ब्रह्मा बाबा ने भी सुनी, हम बच्चों ने भी सुनी, तो फिर ब्रह्मा बाबा सहित हम सब बच्चे शिव बाबा को कहते हैं ओम शांति। तो यहाँ बाप ने कहा ओम शांति, तो सब बच्चे इनकी आत्मा सहित, ब्रह्मा की आत्मा सहित सबकी दिल से आएगा ओम शांति। अर्थात हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। रेस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना, ये रेस्पॉन्ड हुआ ना, रिटर्न में जवाब देना, जो सामने से जिसने कहा ओम शांति उनको जवाब देना, ये रेस्पॉन्ड हुआ ना, दूसरे कोई अर्थ सहित ऐसे कह न सके। केवल हम ब्राह्मण बच्चे ये ओम शांति कहते हैं, भले वो कहेंगे भी दूसरे जिनको ज्ञान नहीं है, परंतु ओम शांति का अर्थ क्या है ये तो समझते नहीं है। तो जब भाषण किया जाता है तो हम भी ओम शांति करते हैं, फिर हम क्या कहते हैं, ये ग्रीटिंग्स ऑफ पीस है, शांति के लिए, शांति के ये शब्द है, विश्व में शांति, स्वयं में शांति। फिर तीन बार ओम शांति कहते हैं, दादी जानकी तो बहुत कहती थी, मैं कौन, मेरा कौन, कहाँ से आया हूँ, तो तीन बार ओम शांति कहती थी। तो बाबा कहते हैं दूसरे कोई अर्थ सहित ऐसे नहीं कह सकते। बाप ज्ञान सूर्य भी है तो ओम शांति कहते हैं, फिर ज्ञान चंद्रमा भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान सूर्य शिव बाबा वो कहते ओम शांति, फिर कभी बाबा कहते डबल ओम शांति, तो फिर ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा फिर वो भी कहते ओम शांति, फिर ज्ञान सितारे भी कहते हैं ओम शांति। सितारों में सब आ गए, सब बच्चे आ गए। अब तुम बच्चों को अपने स्वधर्म का पता लगा है कि हम शांत स्वरूप और शांति धाम के रहने वाले हैं। तीन बार क्यों कहते ओम शांति, मैं शांत स्वरूप, मेरा धाम शांति का धाम, मेरा पिता शांति का सागर, तो तीन बार कहते हैं हम शांत स्वरूप और शांति धाम के रहने वाले हैं, ये तुमको निश्चय हुआ है। अच्छी रीति से तुम आत्मा को जानते हो, बरोबर कहा भी जाता है आत्मा के लिए क्या कहा जाता है, महान आत्मा, पाप आत्मा। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा का यथार्थ परिचय कोई को है नहीं। भल कहते हैं आत्मा निकल गई, पर आत्मा का यथार्थ परिचय किसको नहीं है, किसको भी नहीं है। हम आत्मा इतनी छोटी है, 84 जन्मों का पाठ बजाती है, ये न तुमको पता था और न कोई और जानते हैं। हमें भी पहले थोड़ी पता था कि आत्मा इतनी छोटी, उसमें 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है, और तो तुम भी, तुमको भी पता नहीं था और कोई जानते नहीं। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, बाप को अपना बनाते हो, बच्चे बाप को अपना बनाते हैं। किस लिए अपना बनाया बाबा को, वर्षा लेने के लिए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है। ब्रह्मा तन में आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। कल्प पहले भी आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हुई थी। ये स्थापना का कार्य कल्प कल्प बाप ही करते हैं। हर कल्प बाप ये स्थापना का कार्य करते हैं, जिसको भगवान कहा जाता है। यहाँ भगवान ही ये स्थापना का कार्य करते हैं। भगवान बाप से सब मांगते हैं कि दुख हरो, सुख दो। जब सुख मिल जाता है फिर मांगने की दरकार ही नहीं है, फिर क्यों मांगेंगे? सुख मिल गया फिर मांगने की दरकार ही नहीं। यहाँ मांगते हैं सुख दो, शांति दो। क्यों मांगते हैं? क्योंकि दुख है। वहाँ कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहती। क्यों वहाँ कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहती? क्योंकि बाप सब कुछ देकर जाते हैं, इसीलिए कुछ भी वहाँ मांगने की दरकार नहीं रहती। इसलिए सतयुग में कोई भी बाप को याद नहीं करते। बाप समझाते हैं बच्चों को, हम सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, इस बाबा से हम फिर से सुख धाम का वर्षा ले रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख लेते हैं। लौकिक बाप से हद का सुख मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान भी मिलेगा, चलो कुछ और गाड़ी मोटर भी मिल जाएगी, वो तो बाबा कहते हद का सुख है। पर बेहद के बाप से बेहद का सुख लेते हैं। तुमको समझाया जाता है भक्ति मार्ग कैसे चलता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है, वह ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है, ये सब बाप समझाते हैं। ये है साकारी दुनिया। फिर तीन लोकों के बारे में भी बाप समझाते हैं। ये है साकारी दुनिया और वो है निराकारी दुनिया। अब बच्चे समझ गए हैं, क्या समझ गए हैं? तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान बाबा से लेकर क्या समझ गए हैं कि हमने पूरा आधा कल्प भक्ति की है, पूरा आधा कल्प भक्ति की है। अब कलयुग का अंत है, वर्षा मिलता ही है संगम पर। तो ये बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। अभी हम संगम पर हैं, ये तुम बच्चे ही समझते हो। दुनिया में तो कोई नहीं समझता कि हम संगम पर हैं, बाबा के बच्चे ही समझते हैं। तुम समझते हो कि हम संगम पर हैं, दूसरे कोई समझेंगे नहीं जब तक उनको परिचय नहीं देंगे, सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं देंगे, परमात्मा का परिचय नहीं देंगे, तब तक कैसे समझेंगे ये संगम युग है, इस संगम युग पर परमात्मा आते हैं। जब तक परिचय न देंगे, जरूर संगम युग आता है जबकि पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है। ये सारी पुरानी दुनिया है, सारी दुनिया इस समय पुरानी है। इनको आयरन एज कहा जाता है, ये भी तुम बच्चे जानते हो। क्या क्या जानते हैं ये भी बड़ी लिस्ट है ना, क्या क्या बाबा से हम जानते हैं, ये भी तुम बच्चे जानते हो। पहले पहले सारी दुनिया पर एक ही धर्म होता है, ये भी हम बच्चे जानते हैं, एक ही धर्म होता है सारी दुनिया पर पहले पहले। नई दुनिया में भारत खंड ही सिर्फ होता है, जो भी जहाँ पर भी बस्ती है, जहाँ भी है या धरती है, वो सारा ही भारत खंड है। सतयुग में भारत खंड ही सिर्फ होता है और थोड़े मनुष्य होते हैं और एक ही धर्म होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो मनुष्य भी थोड़े, खंड भी एक। हा? तो नई दुनिया को ही स्वर्ग कहा जाता है। इससे सिद्ध है, क्या सिद्ध है इससे? नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है, इससे सिद्ध है कि नई दुनिया में नया भारत था, नया भारत अब पुराना हो गया है। अब पुरानी दुनिया में है पुराना भारत। गांधी भी कहते थे नई दुनिया नया भारत हो, नई दिल्ली हो, सब नया हो। अब नव भारत वह नई दिल्ली तो है नहीं, नव भारत में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जब नया भारत था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी उसी भारत पर रावण का राज्य है। जिस नए भारत पर लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब उसी भारत पर जो पुराना हो गया है उस पर रावण का राज्य है। ये भी लिखना चाहिए, नई दुनिया नई दिल्ली, फलाने समय से फलाने समय तक इनका राज्य। हाँ, फलाने समय से फलाने समय तक लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता, इनका राज्य। ये समझा भी वही सकता है जो नई दुनिया बनाने वाला है। हम भी नहीं जानते थे, भगवान ही हमें बताता है, वही नई दुनिया बनाने वाला है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं, जिस स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए तुम आते हो। बाप तुमको युक्ति बतलाते हैं अथवा पुरुषार्थ कराते हैं। ये सब बाबा हमको जो युक्ति बताते हैं, ये किस बात के लिए युक्ति है? ताकि हम पुरुषार्थ कर सकें, अथवा पुरुषार्थ कराते हैं। सम्मुख भी मिलने आते हो अथवा वहां भी बैठ पढ़ते हो। मधुबन में आते हो सम्मुख बाबा से मिलने, या वहां सेंटर पर घर में भी पढ़ते हो मुरली, तो वहां भी बैठ पढ़ते हो, तो दिल होती है। जब मुरली पढ़ते हो घर में या सेंटर पर, तो क्या दिल होती है? कि हम जाएं बाबा से सम्मुख मिले मधुबन में। ये सम्मुख मिलते हैं, वहां तो सम्मुख मिलते हैं मनुष्य मनुष्य से। यहां तुम कहेंगे हम जाते हैं शिव बाबा से मिलने। हाँ, अभी बीच में इतनी बारिश थी यहाँ, तो ये बट्टी के भाई बहने आने थे, तो मैंने उनको कहा कि यहाँ बहुत बारिश है, बहुत बारिश है, पांडव भवन में बट्टी नहीं रखेंगे, नीचे करना, यही कहा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो पांडव भवन में ही करेंगे, पांडव भवन में ही करेंगे। हाँ, हम नीचे नहीं करेंगे, नीचे तो आते ही रहते हैं, पांडव भवन में रहने का मौका नहीं मिलता है। फिर हमने कहा यहाँ बहुत बारिश है। कहा कोई बात नहीं, बारिश है तो क्या, पांडव भवन में पहली बार आने का मौका मिला है। हाँ, भट्टी वाले हाथ उठाए, सब भट्टी वाले देखो ये भट्टी में आए हैं, विशाखापट्टनम, हिंदी भी नहीं समझते हैं, फिर इसलिए ट्रांसलेशन थोड़ा रखा है। हाँ, विशाखापट्टनम भी है, गुजरात भी है, दिल्ली भी है, छोटे 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 कई ग्रुप्स आ गए हैं। तो बाबा कहते हैं तो वहां तो सम्मुख मिलते हैं मनुष्य मनुष्य से, यहाँ तुम कहते हो हम जाते हैं शिव बाबा से मिलने। कहेंगे वो तो निराकार है ना, कैसे मिलेंगे उनसे, वो तो निराकार है। अरे हम आत्मा भी तो निराकार है, तो हम निराकार आत्मा निराकार बाप से मिलते हैं। हम भी यहाँ पाठ बजाने आते हैं ना, जिनका नाम है वो जरूर पाठधारी भी है। जो जो आत्माएं इस सृष्टि मंच पर आती है, हर एक का अपना अपना पार्ट भी है। शिव बाबा भी का भी नाम है, वो भी आते हैं, उनका भी पार्ट है। भगवान का भी नाम है ना, निराकार शिव को ही भगवान कहा जाता है, और किसको भगवान नहीं कहेंगे। भगवान निराकार ही गाया जाता है, उनकी पूजा होती है, आत्माओं की भी पूजा होती है। केवल निराकार बाप की नहीं, शिवलिंग की केवल नहीं, आत्माओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं ना, वो मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं, पत्थर का बनाओ व मिट्टी का बनाओ। हाँ, मिट्टी का भी बनाते हैं, पत्थर का भी बनाते हैं। मिट्टी के तो फिर तोड़ने फिर बनाना सहज है, अब पत्थर का बनाएंगे उसको तोड़ेंगे फिर तो बना नहीं सकते ना, इसलिए मिट्टी के बनाते हैं शालिग्राम, ताकि उसको तोड़ सके फिर नया बना सके। अब दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती है, रुद्र यज्ञ में कितनी आत्माओं की पूजा कर सकते हैं? 9 लाख की तो कर सकते हैं ना, 33 करोड़ है देवी देवताएं, तो उनकी भी पूजा होती होगी। वहां पर जम्मू में एक मंदिर है, रघुनाथ का मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है। तो उस मंदिर में एक शिवलिंग बीच में है, लेकिन इतने सारे शालिग्राम हैं, कितने कमरे हैं, हर कमरे में वो पत्थर के स्लैब पर छोटे 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 शालिग्राम हैं। हमने पूछा कितने हैं, कहते करोड़ों, आप गिनती से बाहर है, इतने हैं। और फिर दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र हैं। तो हमने कहा इनकी पूजा कैसे करते हैं, तो कैसे एक एक के शालिग्राम पर थोड़ी कोई पूजा करेंगे, वो चंदन लेते हैं ऐसे ऐसे छिड़का, हो गई पूजा। फिर पाइप लिया पानी का, फिर सब पर छिड़काया, हो गया अभिषेक, हो गया। तो इतना सैनी तो कहाँ पर, कहाँ तक करोड़ों की पूजा वैसे करेंगे एक एक। तो बाबा कहते हैं वो मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं, पत्थर का बनाओ व मिट्टी का, मिट्टी के तोड़ने फिर बनाना सहज है, उनको तोड़ना सहज है फिर बनाना सहज है। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती, रुद्र यज्ञ में कितनी आत्माओं की पूजा कर सकते हैं। बच्चे तो ढेर है, बच्चे तो ढेर है, कितनी आत्माओं की पूजा कर सकते हैं। भगत सब भगवान के बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। तो बाबा ने समझाया है शिव बाबा आते ही भारत में हैं। तुम थोड़े बच्चे हो जो उनके मददगार हो। सारी दुनिया तो भगवान की मददगार नहीं बनती ना, तुम थोड़े बच्चे हो जो बाप के मददगार बनते हो, खुदाई खिदमतगार बनते हो। उनकी ही पूजा भक्त लोग शालिग्राम बनाकर करते हैं। तो किनकी पूजा होती है, जो भगवान के मददगार बनते हैं उनकी पूजा होती है शालिग्राम के रूप में। यज्ञ जो रचते हैं उनमें छोटा यज्ञ भी होता है, बड़ा यज्ञ भी होता है। हाँ, जितना धनवान है जो यज्ञ करवाता है, जितना वो पैसा दे सकता है उस अनुसार बड़ा यज्ञ या छोटा यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ जो रचते हैं उनमें छोटा यज्ञ भी होता है, बड़ा भी होता है। बड़े साहूकार लोग फिर बड़ा यज्ञ रचते हैं, लाख लाख बनाते हैं शालिग्राम। छोटा यज्ञ होगा तो 5-10 हजार बनाएंगे शालिग्राम। जैसा जैसा सेठ वैसा यज्ञ, और फिर उतने शालिग्राम बनाते हैं। एक शिव बाकी शालिग्राम बनाते हैं, फिर उतने ब्राह्मण भी चाहिए, क्योंकि इतने फिर यज्ञ कुंड बनाते हैं। तो यज्ञ कुंड बनाते हैं तो एक एक कुंड के पास एक एक ब्राह्मण भी चाहिए। तो आते हैं भक्त, आते हैं कोई ना कोई कुंड के पास बैठ जाते हैं, कहाँ कथा होती है, कहाँ स्वाहा करते हैं, कहाँ पूजा करते हैं, तो अपना अपना स्थान वो ढूंढ लेते हैं। तो फिर उस अनुसार वहाँ बैठते हैं, जितने ब्राह्मण भी चाहिए जो यज्ञ भी करावे, स्वाहा भी करावे, पूजा भी करे और शास्त्र भी पढ़े, तो इतने ब्राह्मण भी चाहिए जितने कुंड बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं तो एक शिव बाबा बाकी शालिग्राम बनाते, फिर उतने ब्राह्मण भी चाहिए। बहुतों ने यज्ञ देखा होगा, देखा ऐसा यज्ञ, आजकल इतना नहीं होता होगा, पहले तो हमने तो देखा है। हाँ, किसने देखा है ऐसा यज्ञ, थोड़ों ने देखा है। हाँ, तो आजकल बनाते हैं, आजकल तो इतना नहीं है। बाकी हाँ, वो सप्ताह जरूर रखते हैं, भागवत सप्ताह, रामायण सप्ताह, गीता सप्ताह, वो सप्ताह रखते हैं। तो उसमें ज्ञान जो भक्ति की बातें है वो सब सुनाते हैं। तो बहुतों ने यज्ञ देखा होगा, तुम जानते हो बाबा हम बच्चों की सेवा करते हैं, हम फिर औरों की सेवा करते हैं, फिर हमारी भी पूजा होती है शिव बाबा के साथ। बाबा हमारी सेवा करते हैं, हम फिर औरों की सेवा करते हैं, इसलिए पूजा होती है। तुम अभी पूज्य बनते हो, आत्मा कहती है बाबा आप तो सदैव पूज्य हो। अभी आत्मा पूज्य बनती है, लेकिन बाबा तो सदैव पूज्य है। हमको भी पूज्य बना रहे हो बाबा, आप सदा पूज्य हो और हमको अभी पूज्य बना रहे हो। तुम पूज्य आत्मा शरीर लेगी तो कहेंगे पूज्य देवी देवताएं। आत्मा ही पूज्य अथवा पुजारी बनती है, शरीर पूज्य पुजारी नहीं, आत्मा पूज्य पुजारी बनती है। बाप आते भी है एक ही बार, फिर कभी बाप आत्माओं को पढ़ाए ये होता ही नहीं है। सारे कल्प में कोई ऐसा समय नहीं आता जब बाप बच्चों को पढ़ाए, शिव बाबा आके पढ़ाए, केवल इस संगम पर ही होता है। फिर कभी बाप आत्माओं को पढ़ाए ये होता ही नहीं है, आत्मा ही सुनती है। जैसे आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, वैसे परम पिता परमात्मा सुप्रीम आत्मा भी शरीर का आधार ले इन द्वारा सुनते हैं। शरीर के ऑर्गन्स द्वारा आत्मा सुनती है, शिव बाबा भी मुख का ऑर्गन लेकर सुनाते हैं। इन द्वारा तुमको राजयोग सिखलाते हैं, उनको अपना शरीर तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है, यहाँ तो सबका अपना अपना शरीर है। स्थूल शरीर मनुष्यों को तो सबका अपना अपना है। ये है ही साकार दुनिया। शिव बाबा है निराकार, वो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का भी सागर है। वो आकर सबको पतित से पावन बनाते हैं। इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। मुझे अगर प्रेरणा से पावन बनाना हो, कई पूछते हैं ना, भगवान आते क्यों, वो तो ऊपर बैठे भी प्रेरणा से पावन बना सकते हैं। तो बाबा क्या रिस्पॉन्स देते, मुझे अगर प्रेरणा से पावन बनाना हो फिर यहाँ आकर रथ लेने की क्या दरकार है। लेकिन रथ लेना पड़ता है, क्योंकि बच्चों जैसा बनना पड़ता है, मनुष्य रूप में आना पड़ता है, नहीं तो प्रेरणा समझेंगे कैसे। तो यहाँ आकर रथ लेने की क्या दरकार है अगर प्रेरणा से ही पावन बनाना होता। शिव के मंदिर में आगे बैल रखते हैं, नंदीघर रखते हैं ना शिव के बैल, शिव के मंदिर में तो बैल रखते हैं। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं है। उस बैल का भी बड़ा महत्व है, उसकी भी पूजा करते हैं। शिव तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए वो बैल जो होता है नंदीगर, उसके कान में बोलते हैं, वो कान में उसको सुनाते हैं कि ये बात आप शिव को कहना। तो जैसे वो नंदी हो गया, उनका असिस्टेंट हो गया ना, तो पहले उनको सुनाते, उनको पहले उनकी पूजा करेंगे, तभी फिर शिव तक वो पहुंचेगा। तो बाबा कहते हैं, वहां भी हम कहां गए थे, किसी बड़े मंदिर में भुवनेश्वर गए थे, भुवनेश्वर। तो वहां भी शिव का, भुवनेश्वर भी शिव का ही नाम है, तो वहां पर बहुत बड़ा नंदीगण भी है और शिवलिंग तो है ही है। तो वो पुजारी कहता है, पहले आपको जो भी आपकी इच्छा हो ना नंदी के कान में कहो। तो नंदी के कान में कहो फिर शिव सुनेगा। तो पहले उनको सुनाओ, उनकी पूजा करो, फिर शिव के पास जाओ। तो बाबा कहते हैं, अपना अपना ये है ही साकारी दुनिया। हाँ, तो बाबा कहते हैं, शिव के मंदिर में आगे बैल रखते हैं। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि होने कारण कुछ भी समझते नहीं है। अब बैल शिव के आगे क्यों रखा है, बैल शिव के आगे क्यों रखा है? गौशाला नाम तो सुना है ना, तो बैल रख दिया है गौशाला। वो श्री कृष्ण की भी गौशाला है, फिर तो बाबा कहते बैल रखा है। शिव की जहाँ पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो वो पानी जो बाहर जाता है, वो बाहर जो जाता है मंदिर के बाहर, वहां भी गौमुख बनाते, तो वो अभिषेक किया हुआ जल वो गौ के मुख से बाहर निकलता है मंदिर के। तो ये भी वहां गौ रखते हैं। तो गौ और गाय और बैल का बड़ा महत्व है। तो गौशाला नाम सुना है तो बैल रख दिया है। अब बैल पर किसने सवारी की, बैल पर किसने सवारी की? श्री कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में होती है, उनको क्या पड़ी है जो जानवर में आकर बैठेंगे। श्री कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में होती है, उनको क्या पड़ी है जो जानवर में आकर के बैठेंगे, कुछ भी समझते नहीं है। तो कृष्ण के आगे गाय दिखाते हैं और शिव के शंकर के आगे बैल दिखाते हैं। द्रौपदी भी एक थोड़ी थी, ढेर है जो पुकारती है, जो परमात्मा को पवित्रता के लिए पुकारती है वो सब द्रौपदियां हैं, ढेर है जो पुकारती है। उन्होंने तो एक नाटक बना दिया है कि श्री कृष्ण साड़ियां देते जाते हैं। उसमें भी दिखाया है कि जब दुशासन उसकी साड़ी निकाल रहे हैं तो श्री कृष्ण उनको ऊपर से साड़ी दे रहे हैं, उनकी लाज रखते हैं। उसमें भी 21 साड़ियां बताई है, 21 साड़ियां। वो दुशासन निकालता जाता थक जाता है, परंतु वो साड़ियां खुटती नहीं है, तो ऐसे दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण साड़ियां देते जाते हैं, तो 21 साड़ियों का मतलब क्या है, 21 जन्म आत्मा पवित्र रहती है ना, विकारी नहीं बनती। श्री कृष्ण साड़ियां देते जाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुमको 21 जन्मों के लिए नंगन नहीं होना है, विकारी नहीं बनना है 21 जन्मों के लिए। तो उसका क्या निशानी दिखा दी, 21 साड़ियां दी। कहां की बात कहां ले गए हैं, भक्ति मार्ग की अथाह कहानियां हैं। कहते हैं ये कथाएं आदि भी तो सब अनादि है, भी कब से कथाएं ये सुनाते आए हैं, कहेंगे अनादि है। पुनर्जन्म लेते सुनते आए हैं, हर जन्म में सुनते आए हैं। अनादि भी कब से शुरू हुई कुछ भी पता नहीं है। ये भी पता नहीं है कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ, तो वो भी कहेंगे रावण को भी अनादि काल से जलाते आए हैं, सब अनादि कह देते हैं। उनका कोई वर्णन नहीं है। तुम कितनी सेवा करते हो, वो सूर्य चांद सितारे आदि तो है ही है, सतयुग में भी होंगे। सूर्य चांद सितारे तो सतयुग में भी होंगे, तो अभी भी हैं। उनका बदल सदल नहीं होता है, वो बदल सदल नहीं करते सूर्य चांद सितारे। एक गीत भी है ना, वो तो कभी आपस में लड़ते नहीं है, पर मनुष्य देखो धरती पर कितना लड़ते हैं, सूर्य चांद सितारे भी नहीं लड़ते कभी भी। तो उनका बदल सदल भी नहीं होता है। तुम अब निमित्त बने हो, भारत कोई फिर से अंधियारे से निकाल रोशनी में ले आने के लिए तुम ही निमित्त बनते हो। भक्ति मार्ग को अंधियारा कहा जाता है, तुम्हारी महिमा है, तुम धरती के सितारे हो। सितारे हैं तो चांद सूर्य भी होना चाहिए, केवल सितारे तो नहीं है, सूर्य चांद भी है। तो सितारे हैं तो चांद सूर्य भी होना चाहिए। ये है तुम्हारा रूहानी तीर्थ। तुम ऐसी यात्रा पर जाते हो, कैसी हमारी यात्रा, तुम ऐसी यात्रा पर जाते हो जहां से फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। हमारा एक चित्र भी है ना, हम यात्रा पर जा रहे हैं और ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं, फिर कलयुग में वापस नहीं आएंगे, फिर सतयुग में आएंगे। तो जहां से फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे, अभी ये मृत्यु लोक है, फिर यहाँ ही अमर लोक होगा। उस चित्र में दिखा है ना, रॉकेट ऊपर जाता है तो ऊपर जाकर के चलो चंद्रमा तक गया, मंगल तक गया, जहां भी, फिर वहां से वापस यही आता है, इसी धरती पर ही आएंगे ना जो अगर गए भी। परंतु हम जाते हैं तो यहाँ वापस नहीं आएंगे, हम सीधा सतयुग में आएंगे। तो बाबा कहते हैं अभी ये मृत्यु लोक है, फिर यहाँ ही अमर लोक होगा। द्वापर से मृत्यु लोक शुरू होता है। अब तुम सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हो अमर लोक में जाने के लिए। तुम समझते हो हम आत्माओं की यात्रा न्यारी है। हाँ, वो भक्ति मार्ग में यात्राओं पर जाते हैं, यात्रा पूरी करके वापस अपने घर आते हैं, वहीं आते हैं जहाँ से गए हैं। पर तुम यात्रा पर जाते हो, फिर वापस यहाँ इस मृत्यु लोक में नहीं आते हो। तुम यहां बैठे यात्रा पर जाने का पुरुषार्थ करते हो, याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। वो यात्रा पर जाते हैं, विकर्म विनाश कहां होते हैं? विकर्म विनाश तो होते नहीं है, भले यात्राओं पर जाते हैं। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। हाँ, वो यात्रा पर जाते विकर्म विनाश कहां होते हैं? शराब की तो मनुष्यों की इतनी आदत है, जो छिपा करके भी ले जाते हैं। तीर्थों पर भी आजकल शराब खाने तो है ही है, या तो नहीं होगा तो शराब पीने वाले वो शराब भी छिपा करके ले जाते हैं यात्रा पर, तो छिपा कर जरूर ले जाते हैं। आजकल तो बहुत गंदे भी होते हैं यात्रा में, है तो सब पतित ना, जैसे ब्राह्मण पतित वैसे यात्री भी पतित। ब्राह्मण भी कोई ब्रह्मचारी थोड़ी होते हैं, जो पंडे भी ले जाते हैं वो भी कोई पवित्र थोड़ी होते हैं। तो बाबा कहते वैसे यात्री भी पतित, ब्राह्मण भी पतित, पंडे लोग यात्रा कराते हैं, पावन थोड़े ही है, तुम तो पवित्र रहते हो। सच्चे ब्राह्मण तुम हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र रहती है, याद की यात्रा से ही तुम पवित्र बनते हो। सतो प्रधान बनना है तो बाबा बार बार लिखते हैं। बाबा जब पत्र लिखते थे तो सबसे पहले क्या लिखते थे? मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, ये पहला शब्द होता था। इसलिए बाबा की हर मुरली से पहले मीठे बच्चे आता है, तो पत्र में भी बाबा ऐसे ही पहले लिखेंगे मीठे बच्चे। तो मीठे बच्चों, ये शिव बाबा ने आत्माओं को लिखा, पत्र भी लिखते थे तो मीठा बच्चा, मीठा मीठा बच्चा बाबा जरूर संबोधन करते थे। ये किसने लिखा? शिव बाबा ने आत्माओं को लिखा। मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बस एक ही डायरेक्शन है, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे, एक ही डायरेक्शन है बाबा का, यही मुख्य है। कितना सहज है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो विकर्म नहीं विनाश होंगे, फिर सजा खाएंगे, सीधी बात है। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, फिर सजा खाएंगे। बाबा तो कहते हैं तुम कहां भी जाओ ये कमाई कर सकते हो, याद की कमाई, ज्ञान की कमाई, सेवा की कमाई, धारणा की कमाई कर सकते हो, जहां भी जाओ कमाई कर सकते हो। उठो बैठो खाओ, सिर्फ बाप को याद करो, ये तुम्हारी कमाई कमाई है। बच्चों के लिए तो और ही सहज है, इसमें कोई अटेंशन आदि की बात नहीं है, बहुत सहज है। श्रीनाथ के मंदिर में श्रीनाथ की याद में बैठते हैं, भोग लगता है, तो पत्थर की मूर्ति है ना, श्रीनाथ की मूर्ति भी तो पत्थर की मूर्ति है। वहाँ तो जो लड्डू बनता है ना, देखा है श्रीनाथ में जो लड्डू बनता है, हमने देखा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। तो वो पुजारी जो था उनसे मैंने पूछा, लड्डू तो इतना, अभी श्री कृष्ण इतना छोटा बच्चा मिचनू वो दिखाया कि वो एक उंगली पर कैसे गोवर्धन पर्वत को उठाया, तो इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा लड्डू खाएगा? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये तो प्रसाद है ना, ये प्रसाद है, वो तो केवल वासना लेगा, मूर्ति के आगे रखेंगे फिर तो बाजारों में बिकता है सारा लड्डू। तो बाबा कहते हैं श्रीनाथ के मंदिर में श्रीनाथ की याद में बैठते हैं, भोग लगता है। अब है तो पत्थर की मूर्ति ना, भोग भी किसको लगाना चाहिए, अब भोग किसको लगाना चाहिए? अधिकारी तो एक ही शिव बाबा है, भोग तो एक शिव बाबा को ही लगाना चाहिए, अधिकारी तो एक शिव बाबा है। सर्व का सदगति दाता पतित पावन वो है। तो बाप कहते हैं मैं तो स्वीकार ही नहीं करता हूँ, मैं तो स्वीकार ही नहीं करता हूँ, तुम मेरे ऊपर दूध भी पानी वाला चढ़ाते हो। शिव बाबा का जो अभिषेक करते हैं तो एकदम कोई खालिस दूध थोड़ी डालते, पानी डाल करके वो पानी वाला दूध चढ़ाते हैं। पानी वाला चढ़ाते हो ये भोग लगाते हो, हाँ ये भोग लगाते हो, पानी वाला दूध चढ़ाते हो क्यों? मैं तो निराकार अभोक्ता हूँ, मेरी क्या पूजा करते हो? मेरे आगे भोग रखेंगे, लेकिन भक्तों ने भोग लगाया, उन्होंने ही बांट कर खाया। तुम जानते हो शिव बाबा को भोग तो जरूर लगाना है। पहले बाबा कहते हैं मैं तो खाता नहीं, लेकिन फिर बाबा जरूर कहते हैं कि भोग तो लगाना ही चाहिए। हम शिव बाबा को भोग लगाते हैं क्योंकि ये शिव बाबा का भंडारा है, ये शिव बाबा का भंडारा, शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर हा? तो इसीलिए शिव का भंडारा है तो शिव बाबा को भोग जरूर लगाना है। शिव बाबा का भंडारा है ना, जिसका भंडारा है उसको भोग जरूर लगाना पड़े। तो भंडारा भी भरपूर, तो भंडारी में डालते हैं ना, कोई थोड़ा थोड़ा भी डालते, एक रुपया भी डालते हैं तो कहेंगे भंडारी भी भरपूर। हाँ भंडारा भी भरपूर तो भंडारी भी भरपूर। तो जिसका भंडारा है उसको भोग जरूर लगाना पड़े। भाई तुम भोग लगाते हो, खाते भी तुम बच्चे ही हो, ये ब्रह्मा खाता है, मैं नहीं खाता हूँ। शिव बाबा कहते मैं नहीं खाता हूँ, बाकी शिव बाबा क्या करते, खाते नहीं है, बाकी वासना तो आएगी ना बाबा को, वो सुगंध तो आएगी, भले ब्रह्मा के थ्रू बहुत अच्छा भोग बनाया है, बाबा कहेंगे बहुत अच्छा भोग बनाया है। कहने के लिए ऑर्गन्स तो है ना, ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा कहेंगे। तो जैसे बताए ना, बाबा को दादी खिलाती थी, बाबा ये मीठा आम है, ये थोड़ा फीका है, तो ये थोड़ा खट्टा है, बाबा ये भी सब बताते थे। तो ये किसने वासना ली? शिव बाबा ने तो थोड़ी वासना ली होगी, बाकी ब्रह्मा बाबा ने ली, परंतु पेट तो गुजरा दादी के गया। तो परंतु हम जानते ना इसका भावार्थ क्या है। तो बाबा कहते कहने के लिए ऑर्गन्स तो है ना, ये ब्रह्मा खा सकते हैं, ये शरीर तो इनका है ना, मैं सिर्फ इनमें आकर प्रवेश करता हूँ, मुख ही काम में लाता हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं तो मुख ही काम में लाते हैं। तुम बच्चों को पति से पावन बनाने, गऊ मुख भी कहते हैं ना, बरोबर गऊ भी है, गाय भी है, तुम जानते हो इनसे ही तुम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तो ब्रह्मा माँ हो गई ना, ये गऊ हो गई, तो ये गऊ भी है तो बैल भी है, क्योंकि इनके द्वारा ही एडॉप्ट करते हैं, इसलिए ब्रह्मा हमारे अलौकिक पिता भी है लेकिन माँ भी है। तो तुम जानते हो इनसे ही तुम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, ये माता पिता दोनों है। तो ब्रह्मा कौन हो गए? माता भी और पिता भी दोनों हो गए, परंतु माताओं को संभाले कौन? ये माँ भी है, ब्रह्मा माँ, लेकिन माताओं को संभाले कौन? इसलिए सरस्वती को निमित्त रखा कि माँ बच्चों को संभालती है, इसलिए सरस्वती को निमित्त रखा। ड्रामा प्लान अनुसार माता गुरु की महिमा भी चाहिए ना, पहली गुरु तो बच्चे की माँ ही होती है ना, माँ ही बच्चे को लिखना भी सिखाती है, सब माँ करती है, परंतु माता गुरु की महिमा भी चाहिए ना। गुरु तो पहले नंबर में मशहूर ये है, भक्ति मार्ग में गुरु मशहूर कौन है? ब्रह्मा। गुरु मशहूर तो ये है ना, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, तो वो उनको गुरु कहते हैं। तो बाबा कहते हैं गुरु ब्रह्मा ठीक है, जैसे बाप वैसे बच्चे, तुम ब्राह्मण भी सच्चे गुरु बनते हो, हाँ, तुम ब्राह्मण सब बच्चे भी सच गुरु बनते हो, सबको सच्चा रास्ता बताते हो स्वर्ग का। क्योंकि गुरु का मतलब क्या है? जो अंधकार को मिटाए, उसी को ही गुरु कहते हैं। तो अज्ञान अंधियारा मिटाने वाला वो गुरु हो गया। तो बाबा कहते हैं, तुम ब्राह्मण भी सच्चे गुरु बनते हो, सबको सच्चा रास्ता बताते हो स्वर्ग का। आत्मा ही मुख से रास्ता बताती है कि मन मना भव मध्याजी भव। तो बाप माँ बच्चे सब यही रास्ता बताते हैं। शिव बाबा भी बताते, ब्रह्मा माँ भी बताते और बच्चे भी रास्ता बताते हैं। तो रास्ता बताते हैं, यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो याद रहती है, फिर घर जाते हो तो बहुत बच्चे भूल जाते हैं। यहाँ तो आनंद आता है, बाबा पास आए हो, बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बन ये युक्ति बताओ कि मुक्ति धाम बाप को और वर्षे को याद करो। स्वदर्शन चक्रधारी बन सबको ये युक्ति बताओ कि मुक्ति धाम बाप को और वर्षे को याद करो। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, आपस में एक दो को व बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है। आपस में एक दो को व बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है। बाप भल अभोक्ता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है उसको पहले स्वीकार जरूर कराना है। दूसरा, पूजनीय बनने के लिए क्या करना होगा? पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है। बाबा के मददगार बच्चे बनेंगे तो शिव बाबा के साथ पूजे जाएंगे। तो पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है, बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी। अभी हमारी पूजा नहीं हो सकती है क्योंकि शरीर तो फिर भी पतित है, आत्मा भले पावन बन रही है लेकिन शरीर तो पतित ही है। तो बाबा कहते हैं जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी। वरदान, वरदान अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भवा। बहुत बड़ी बात है लॉ मेकर। तो जो लॉ मेकर है, कानून बनाने वाले हैं, वो लॉ ब्रेकर नहीं बन सकते, वो नहीं तोड़ सकते हैं। उनकी सजा तो और भी बड़ी है। जो कानून बनाते हैं और वही तोड़े तो उनकी तो कितनी सजा होगी। तो अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। जो स्वयं प्रति लॉफुल बनते हैं वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकते हैं। जो नियम हम अपने लिए बनाते हैं, हम दूसरों को भी वो नियम बताते हैं। जो स्वयं लॉ को ब्रेक करते हैं, खुद ही नियमों पर नहीं चलते हैं, तोड़ते हैं नियमों को, वो दूसरों के ऊपर लॉ नहीं चला सकते हैं। उनको नहीं कह सकते क्योंकि हम ही नहीं चलते हैं। दूसरों पर लॉ नहीं चला सकते, इसलिए अपने आप को देखो कि सवेरे से रात तक मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संपर्क व एक दो को सहयोग देने में व सेवा में कहां भी लॉ ब्रेक तो नहीं होता है। जो बाबा ने नियम बताए हैं वो आप कहीं ब्रेक तो नहीं होता है। कैसे कैसे? देखो, सवेरे से रात तक मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संपर्क में व एक दो को सहयोग देने में व सेवा में कहां भी लॉ ब्रेक तो नहीं होता है, नियमों को भंग तो नहीं करते हैं। जो लॉ मेकर है वो लॉ ब्रेकर नहीं बन सकता है, वो नियमों को तोड़ नहीं सकता है। जो इस समय लॉ मेकर बनते हैं वही फिर क्या बनेंगे भविष्य में, वही फिर पीस मेकर से न्यू वर्ल्ड मेकर बन जाते हैं, वही शांति स्थापन करते हैं और वही नई दुनिया बनाते हैं। स्लोगन, कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत बनना है। कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत बनना है। कर्म नहीं छोड़ना है लेकिन कर्म के बंधन से जरूर मुक्त होना है। मैंने किया हाँ ये नहीं कहना। यह व्यक्ति सारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए। अगर ज्वाला स्वरूप याद होनी है तो उसके लिए क्या चाहिए, मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए, मन बुद्धि को पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए, है ना। ब्रेक भी लगानी और स्टीयरिंग व्हील को मोड़ते भी ना, ताकि वहां जाके अटैक ना करे तो उसको मोड़ते भी हैं। तो बाबा कहते हैं तो पावरफुल ब्रेक भी चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट न होकर जमा होती जाएगी। ब्रेक लगाने की भी शक्ति चाहिए और मोड़ने की शक्ति भी चाहिए। जितना जितनी जमा होगी उतना ही परखने की, तो बाबा कहते इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट न होकर जमा होती जाएगी। तो जितनी जमा होती जाएगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए अब संकल्पों का विस्तार बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
फोटो कैंसिल, फोटो नहीं होगा, फोटो नहीं होगा।
अच्छा, तो अभी सभी योग में बैठेंगे।